कृष्णा। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो है कि भक्त कौन है, वैष्णव कौन है। अभी कोई पूछेगा, अरे ये कोई चर्चा करने का विषय, हम सब भक्त हैं इसलिए तो यहां आए हैं। तो भक्त कौन है मतलब क्या है? जो कृष्ण का भक्त है वो भक्त है, जो भक्ति करता है वो भक्त है, सही है। परंतु अलग अलग लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है कि भक्त कौन है। कितने लोग बाहर आपको मिलेंगे, सिगरेट फूंक रहे होंगे, पान चबा रहे होंगे, दिन भर टीवी के सामने बैठे हुए होंगे, लेकिन थोड़ी भावना है, जब आप उनसे बात करने जाएंगे तो कहेंगे हम भी कृष्ण भक्त हैं। अब इस कौन में आने के बाद कई भक्त बोलेंगे, नहीं नहीं, सच्चा भक्त तो वो है कि वो चार नियम का पालन करे, 16 माला करे रोज, तब वो भक्त कहलाएगा, नहीं तो ठीक है भक्त है लेकिन सच्चा भक्त नहीं। तो और एक दृष्टिकोण हो गया। और एक दृष्टिकोण है, कोई कहेगा अरे ये तो भक्त होने की तैयारी है, वास्तव में ये थोड़ी भक्त है, ये तो भक्ति की शुरुआत है। सच्चा भक्त कौन होता है? सच्चा भक्त वो है जो वास्तव में कृष्ण से शुद्ध प्रेम करता है, जिसके मन में कोई भी भौतिक वासना कामना नहीं है, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, केवल कृष्ण प्रेम है उसके हृदय में और उसके अलावा कुछ नहीं, ये भक्त है। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भक्त या वैष्णव की परिभाषा करते हैं। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है? अभी जो हमने बताए, अलग अलग दृष्टिकोण बताए, कौन से सही है और कौन से गलत है, कोई बोलिएगा? सभी सही है। हाँ, ये उत्तर सही है। जैसे अगर हम प्रश्न पूछें, विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी कौन है? जो विद्या प्राप्त करता है, जो सीखने को जाता है, जो सीख रहा है कुछ, कोई विषय को जो व्यक्ति सीखता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी जो विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करता है वो विद्यार्थी है। परंतु विद्यार्थियों में कोई श्रेणियां होती हैं कि नहीं होती हैं? किस तरह की श्रेणियां होती हैं? जैसे एक विद्यार्थी है, पाठशाला के पहली कक्षा में है, और एक विद्यार्थी है वो मैट्रिक में, एसएसएलसी में है, पढ़ाई कर रहा है, और एक विद्यार्थी है वो बीए के अंतिम साल में, डिग्री के विश्वविद्यालय में डिग्री के अंतिम साल में पढ़ाई कर रहा है, और एक है जिसने एमए कर लिया, और एक है जिसने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गया वो उस विषय में, वो भी विद्यार्थी है। तो हम बोलेंगे इनमें से कौन विद्यार्थी है, तो आप क्या जवाब देंगे? सभी विद्यार्थी हैं, परंतु दोनों में अंतर है, अलग अलग श्रेणियां होती हैं विद्यार्थियों के। पहले कक्षा के विद्यार्थी और एमए पीएचडी करने वाले विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी हैं, परंतु दोनों में भेद भी करना होगा। एक भी है, भिन्न भी है। एकता किसमें है? कि दोनों विद्या प्राप्त कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, परंतु उनका स्तर अलग है। अपने अपने क्षेत्र में वो ज्ञान के विकास में उनकी वृद्धि या उनकी प्रगति अलग अलग मात्राओं में हुई है, इसलिए उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से वैष्णव भी कई तरह के हो सकते हैं, श्रेणियां हो सकती हैं वैष्णव की, लेकिन उनमें एकता क्या है? कि सब कृष्ण को मानते हैं, सब कृष्ण का नाम लेते हैं, सब कृष्ण को पूजते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने विश्लेषण किया था कि वैष्णव किस तरह के, किन तरह के होते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कई बार यह उपदेश दिया। आप तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, और इस पृथ्वी के उद्धार के लिए भक्त का रूप धारण करके यहां पर प्रकट हुए। प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, तत्पश्चात जगन्नाथपुरी में निवास करने के लिए गए। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वो जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे और हर साल रथ यात्रा का उत्सव अपने भक्तों के संग बड़े भक्ति भाव से उत्साह से मनाया करते थे। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो चातुर्मास के शुरुआत के थोड़ा पहले होता है या करीब करीब उस समय होता है, तो बंगाल से भी बड़ी संख्या में भक्त चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आया करते थे। अलग अलग गांवों से आते थे, कई लोग नवद्वीप से आते थे, कई कुमारहट्ट से, कई पानीहट्टी से, कई लोग कुलीन ग्राम से, कोई कुलिया से, ऐसे सिलहेट से भी आते थे कोई, ऐसे जगह 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 से लोग आते थे। और उस समय याद रखिएगा कि कोई रेलगाड़ी वगैरह नहीं हुआ करते थे, उनको पैदल आना पड़ता था, तो इतने दूर बंगाल के अलग अलग गांवों से चल के वो जगन्नाथपुर में आते थे, वहां पर 4 महीने रहा करते थे और फिर वापस अपने अपने गांव में चले जाते थे। तो ऐसे ही भक्त थे जो कि कुलीन ग्राम में रहते थे, ये भी एक गांव है बंगाल में। तो यहां के निवासी भी वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए भी आते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के समय वो संकीर्तन का दल पार्टी बनाया करते थे, रथ के सामने आगे बाएं पीछे सब जगह संकीर्तन पार्टियां अलग अलग हुआ करती थी, तो उन्होंने ऐसे 7 पार्टियां बनाई थी संकीर्तन के लिए, 4 आगे, 1 बाएं ओर, 1 दाहिने ओर, 1 पीछे। तो इन 7 पार्टियों में से एक पार्टी जो है वो कुलीन ग्राम के भक्तों की पार्टी थी। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप लोग बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं तो आप भी एक पार्टी बनाइए और जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होइए। जैसे यहां पर भी जब बेलगाम में जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो जगह जगह से आए हुए भक्तों को बोले जाते, ठीक है आप अपना संकीर्तन पार्टी कीजिए, बंबई के भक्तों का 1 पार्टी, यहां के भक्तों का और 1 पार्टी, ऐसे संकीर्तन पार्टी बन जाती है। तो कुलीन ग्राम के भक्त वहां पर चैतन्य महाप्रभु के संग में 4 महीने रहे जैसे अन्य भक्त रहे, और फिर जब वो 4 महीने समाप्त हो गए तो सब अपने अपने गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। चैतन्य महाप्रभु सबके पास आए, सबको आलिंगन किया, सारे भक्तों का गुणगान करने लगे, हर एक गांव के जो भी भक्त आए थे उनकी प्रशंसा करने लगे। यह है भगवान का गुण कि वो हमेशा अपने भक्तों की स्तुति करते हैं। जैसे कि भगवान के भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने ही भक्तों का गुणगान करते हैं। ऐसे हैं भक्तों के गुण जो कि भगवान को भी आकर्षित करते हैं और भगवान उनकी स्तुति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं प्रेम से। तो हर एक भक्त की प्रशंसा करके बड़े उनको फिर अपने अपने गांव में भेज देते थे और कहते ठीक है अगली साल चतुर्मास के समय चले आना, हम लोग साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे। तो जब इस साल में भक्तों को वापस भेजने का समय आया तो अपने अपने गांव में लोग वापस से चले गए, लेकिन जगन्नाथपुरी में रहने वाले भक्तों को भी उन्होंने वापस भेज दिया। नित्यानंद प्रभु, गंगादास, रामदास, गदाधर दास, ऐसे कई भक्त थे, उनको आदेश दिया कि आप अब मेरे साथ मत रहना, ज्यादा जरूरी है कि आप जाके बंगाल में प्रचार करना, क्योंकि वहां बहुत आवश्यकता है, लोग बहुत शाक्त बन गए हैं। शाक्त मतलब शक्ति देवी काली दुर्गा की पूजा करना और मांस खाना शराब पीना, पूरा धर्म को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया है। तो आप जाके वहां प्रचार करना। फिर कुलीन ग्राम के भक्त वहां पर आए तो कुलीन ग्राम के भक्तों को उन्होंने देखा, बहुत आनंद से उनका स्वागत किया, उनको आलिंगन किया और फिर उनसे कहा कि आप भी अगले साल आना और याद रखना अगले साल आते समय अच्छे अच्छे रेशम की डोरी, रेशम के रस्सी जो है वो लेकर आना जगन्नाथ जी के लिए, जैसे हमने पहले बताया था। पहले क्या बताया था चैतन्य महाप्रभु ने उनको, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर रथ के ऊपर बिठाया जाता है और अंदर से बाहर लाते लाते कई जो दैत पंडा होते हैं, जो विशेष उनके सेवक होते हैं, वो उनको उठाकर लेके आते हैं। और जगन्नाथ की मूर्ति तो बहुत बड़ी है और बहुत भारी है, उसको उठाना बहुत मुश्किल है, कई बलवान लोग लगते हैं उठाने के लिए। और उनको ऐसे रेशम के रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वो गिरे नहीं, और इतने भारी होते हैं कि बीच बीच में उनको कहीं आराम देना पड़ता है, और बीच में जो कपास के जो ऐसे गद्दे होते हैं उनके ऊपर रखते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ इस उत्सव का दर्शन कर रहे थे, जिसको कि पांडु विजय उत्सव कहते हैं, तो उस समय उन्होंने देखा कि अचानक ये रेशम की डोरियां जो है वो टूट गईं, और टूटने की वजह से जब ये उन गद्दियों के ऊपर, तकियों के ऊपर रखा गया तो वो भी फूट गए और ये कपास के टुकड़े जो है वो सब आकाश में, आसमान में उड़ गए इधर उधर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों को सिक्योर देखा और बड़े आदर पूर्वक प्रेम से उनसे कहा कि देखो आपके गांव में बड़े अच्छे रेशम की रस्सियां बनती हैं, तो अगले साल आप बिल्कुल अच्छे कड़क मजबूत रस्सियां ऐसे बनाकर लेकर आना। ये देखो रस्सियां, देखो टूट गए, कितनी जल्दी से टूट गई, आप अच्छी से रस्सियां बनाकर लाना और आज से आपको इन रस्सियों की पूजा करनी है, आप इनके सेवक हैं, इनकी उपासना करो। देखिए भगवान से संबंधित जो भी वस्तु होते हैं वो भी पावन होते हैं, जैसे भगवान के कपड़े हैं, भगवान के गहने हैं, भगवान के थाली है, भगवान के आसन हैं, जो भी भगवान की सामग्री होती है वो भी सब दिव्य माने जाते हैं, इसलिए उनका भी बड़े आदर से हमको ठीक ठाक उसको रखना चाहिए। जैसे भगवान के करताल हैं, मृदंग हैं, उनके पुस्तक हैं, केवल इधर उधर नहीं रखने चाहिए, अच्छी जगह में, साफ जगह में रखने चाहिए, आदरपूर्वक रखने चाहिए, जहां हमारे पैर लग सकते हैं जमीन पर नहीं रखना चाहिए, रखना है तो किसी आसन के ऊपर या किसी भी एक टेबल के ऊपर रखना चाहिए जहां हम पैर ना दें, जहां हम बैठे नहीं। जैसे यहां व्यासासन के ऊपर भी जहां हम बैठते हैं यहां पर जपमाला, करताल इत्यादि नहीं रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुलीन ग्राम के निवासियों से कि ये जो रस्सियां हैं जो कि जगन्नाथ जी को बांधती हैं उनको यहां लाने के लिए पांडु विजय उत्सव में, ये साक्षात अनंत शेषनाग का एक रूप है। आप तो जानते ही हैं कि अनंत शेष भगवान कृष्ण की सेवा अपने आप के 10 तरह के विस्तारित रूपों में करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको आदेश दिया तो कुलीन ग्राम के भक्त बड़े प्रसन्न हुए। उनमें से प्रमुख थे सत्यराज खान और रामानंद वसु। तो उनको बड़ा आनंद आया कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक ऐसे विशेष आदेश दिया है। तो अगले साल से जब भी वो आया करते थे जगन्नाथपुरी में, इन रेशम की अच्छी अच्छी मजबूत रस्सियां, डोरियां बनाकर लेकर आते थे और इनका इस्तेमाल होता था पांडु विजय उत्सव में। तो जब वो जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उस साल उनको याद दिलाया कि देखो याद है ना पांडु विजय उत्सव के समय मैंने क्या बताया था आपको, लेकर आना अगले साल। तो बड़े खुश हुए। तो जाते जाते फिर सत्यराज खान और रामानंद वसु ने उनसे कई प्रश्न किए। जब बात कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहने लगे कि हाँ आप लोग कुलीन ग्राम के हो। हाँ कुलीन ग्राम तो बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि कुलीन ग्राम में गुणराज खान नाम का एक वैष्णव है और उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय, और उस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे सुंदर वाक्य लिखा है कि इससे ये सिद्ध होता है कि उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कितना शुद्ध प्रेम है। और वो वाक्य क्या है, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ एवा के विकायनुतार वंशे रहात। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, ये गुणराज खान की कविता का एक वाक्य था कि नंद नंदन मतलब नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को ये एक वाक्य कितना इतना पसंद आया कि वो कहने लगे ए वाक्य विकाइनो तार वंशेर हाथ, कि इस एक वाक्य के लिए मैंने अपने आप को न केवल गुणराज खान को लेकिन उनके जितने भी वंशज हैं और आने वाले हैं उन सबको मैंने अपने आप को बेच डाला है इस एक वाक्य की वजह से। क्या था वो वाक्य, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, कि भगवान कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुलिना ग्राम के भक्तों का की प्रशंसा करना शुरू किया और वो कहने लगे आप सब की बात तो दूर है लेकिन आपका गांव इतना पावन है कि आपके गांव के कुत्ते को भी मैं बहुत मानता हूं, तो अन्यों की बात तो दूर है क्यों आपके गांव में इतने सब महान वैष्णव रहते हैं। और फिर रामानंद वसु और सत्यराज खान इन्होंने कई प्रश्न किए चैतन्य महाप्रभु से। तो क्या प्रश्न थे ये सत्यराज खान के, ये खान मतलब मुसलमान नहीं है, ये खान एक पदवी थी वहां इसलिए उनको मिलती थी, जैसे रामचंद्र खान सत्यराज खान। रामचंद्र खान तो भक्त नहीं थे लेकिन सत्यराज खान भक्त थे, बुद्धिमंत खान, ऐसे कई चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनको ये पदवी मिली थी खान। तो सत्यराज खान का प्रश्न है गृहस्थ विषयामी की मोर साधने श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। सत्यराज खान कहने लगे कि हे प्रभु गृहस्थ विषय आमी, मैं एक गृहस्थी हूं साथ साथ एक विषयी हूं, मतलब इंद्र तृप्ति में बहुत लगा हुआ हूं, कि मोर साधना मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए उचित कर्तव्य क्या है, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे, आपके श्रीमुख से मुझे ये आज्ञा दीजिए, ये मेरा निवेदन है आपके चरणों में। तो सत्यराज खान का ये प्रश्न था कि एक गृहस्थ के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका धर्म क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। सत्यराज खान महान वैष्णव है लेकिन अपने आप को विषयी बोल रहे हैं, है नहीं वो विषयी लेकिन नम्रता की वजह से बोल रहे हैं गृहस्थ विषयी आमी। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं प्रभु कहे न कृष्ण सेव वैष्णव सेवान निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु कहे न, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, तीन आदेश देते हैं उनको, कहते हैं कृष्ण की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो और निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करो, ये तीन आदेश उनको देते हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये निरंतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे भी भगवान इस आदेश को देने वाले हैं, निरंतर मतलब हमारे भगवान के नाम के जप और कीर्तन में को अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब कृष्ण कहा और फिर 10 दिन बाद और एक बार दूसरा शब्द कृष्ण कहा, ऐसे नहीं, निरंतर होना चाहिए बिना कोई अंतर के। और ऐसे कई अर्थ हैं जिनको आगे चल के हम जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो और सतत भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन करो, एक वाक्य में चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। जब सत्यराज खान ने यह सुना तो कृष्ण सेवा समझ गए, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करना ये समझ गए, लेकिन वैष्णव सेवा जब ये बात आई तो सत्यराज खान के मन में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कौन है वैष्णव? आप बोल रहे हैं कि हम ये तो पूछने की जरूरत नहीं कि कृष्ण कौन है, वो तो मालूम है। कृष्ण की सेवा करो ठीक है करेंगे, वैष्णव की सेवा करो तो कौन है ये वैष्णव, कैसे पहचान सकते हैं? तो ये प्रश्न है सत्यराज खान का। सत्यराज बोले वैष्णव चीनी भो कैमोने कि वैष्णव कह तारा सामान्य लक्षणे। सत्यराज खान कहने लगे वैष्णव चीनी भो कैमोने, मैं कैसे पहचान सकूंगा एक वैष्णव को, के वैष्णव कौन है वैष्णव, कहो तार सामान्य लक्षणे, उनके जो सामान्य लक्षण क्या है जिनसे कि हम एक वैष्णव को पहचान सकें। तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे जार मुखे सुनिय कबार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबकार। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जार मुखे सुनी एक बार, जिसके मुख से एक बार केवल क्या सुनेंगे, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। जिसके मुख से एक बार भी अगर हमने किसी के मुख से कृष्ण का नाम सुना तो से पूज्य, हमारे लिए वो व्यक्ति पूज्य हो जाता है और सब व्यक्तियों के बीच में वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ सभाकार। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी टीका करते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार भी अगर कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं उसे हमें परिपूर्ण मानना चाहिए और उसको वैष्णव मानना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे इसकी व्याख्या करने लगे। एको कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते हैं। एको कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, केवल एक कृष्ण नाम से सारे पाप क्षय हो जाते हैं। कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके हम सारे भक्ति के नौ जो पद्धतियां हैं उनका पालन कर सकते हैं। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें चैतन्य महाप्रभु ने बताई हैं। पहली बात क्या है कि एक बार केवल कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये नाम कैसे लिया जाना चाहिए, निरअपराधी भाव से, बिना कोई अपराध के। हर रोज सुबह को हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं और अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव मानता है, जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसको इन 10 नाम अपराधों से बच के रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति निरअपराधी भावना से भगवान कृष्ण का नाम एक बार भी अगर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस गणना से भगवान का नाम लेता है कि नाम लेकर पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर से मैं पाप करूंगा, वो भी एक नाम अपराध होता है, इसलिए उससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात जो यहां चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से नवविधा भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चिन्ह नव लक्षणा। तो ये नौ लक्षण क्या है भक्ति के, श्रवण कीर्तन आदि। प्रहलाद महाराज ने परिभाषा की है भक्ति की कि भक्ति करनी है तो ये नौ पद्धतियां हैं, इसको नवधा भक्ति, नव विधा भक्ति कहते हैं। तो कोई व्यक्ति श्रवण कर सकता है, कोई कीर्तन कर सकता है, कोई अर्चना कर सकता है, कोई वंदना कर सकता है। इन नौ विधियों से एक भी कोई विधि अगर कोई अपनाए बड़े हृदय से तो परिपूर्णता की प्राप्ति वो कर सकता है। परंतु कलयुग में विशेष करके श्रवण कीर्तन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भले कोई व्यक्ति अन्य कोई काम न कर पाए, अगर वो कृष्ण नाम सतत लेता हो तो उसको सारे 9 विधियों के पालन करने का फल आसानी से मिल जाएगा। तो कृष्ण नाम का उच्चारण करना मात्र ये नवधा भक्ति के पूरे अंगों का पालन करने के बराबर है। वास्तव में श्री जीव गोस्वामी अपने शत संदर्भों में बताते हैं कि खास करके कलयुग में श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अन्य विधियां जो हैं नौ विधियों में से जिनका वर्णन प्रहलाद महाराज ने किया है, उनको करते समय भी, उनको करने के पहले भी और उनको करने के बाद भी कृष्ण नाम का उच्चारण होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए हमारे इस्कॉन संस्था में जितने भी और उपाय हैं, जैसे कि हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और हमको यज्ञ भी करते हैं, तो उसके पहले, उसके दौरान और उसके अंत में हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य बोलना चाहिए। यह वास्तव में इन विधियों को परिपूर्ण बनाता है। किसी भी कार्य को शुभ, परिपूर्ण और सफल बनाना हो तो उससे कृष्ण नाम जोड़ देना पड़ेगा। अगर कोई भी काम हम करते हैं परंतु उसमें कृष्ण नाम नहीं है तो वो कार्य परिपूर्ण या सफल नहीं हो पाएगा। तो अर्चा विग्रह की पूजा करते समय भी कई मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है और इन सारे मंत्रों में भी भगवान के नाम का उच्चारण होता है। ये सारे मंत्र कृष्ण के नाम के ऊपर आधारित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे उनको उपदेश दिया। हरिनाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाले सवरे उद्धारे। और ये हरिनाम की विधि इतनी पावन है, इतना सुलभ है ये मार्ग कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दीक्षा पुरश्चर्या ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं। हालांकि हम कई रविवारों से सुनते आए हैं कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के नियमों का, विधियों का वर्णन कर रहे थे। उनमें से पहले 5 क्या थे? गुरु और दीक्षा से संबंधित थे। तो साधारणतः हरेक भक्त को एक सद्गुरु के शरण में जाके दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये विधि है। परंतु हरिनाम इस पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा अगर कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो नाम हरिनाम उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर अपने हृदय से वो भगवान का नाम पुकार रहा है तो अवश्य इसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा। और इसका प्रमाण हम वास्तव में देखते हैं कि यहां भी हमारे मंदिर में या संस्था में कितने भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है अभी तक, परंतु बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, प्रामाणिक रूप से रहते हैं, उनका आचार विचार प्रचार सब बहुत अच्छा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि क्योंकि उन्होंने दीक्षा नहीं दिया उनका हरिनाम लेना निष्फल है? नहीं, क्योंकि वो हरिनाम श्रद्धा पूर्वक एक संप्रदाय के आश्रय में आके ले रहे हैं तो इसलिए उनका हरिनाम लेना कभी भी निष्फल नहीं होगा। दूसरी ओर अगर मान लीजिए कोई ऐसा भक्त है जिसने दीक्षा ले लिया हो परंतु वो हरिनाम ठीक से नहीं ले रहा है, विधियों का नियमों का पालन नहीं कर रहा है ठीक से, तो फिर क्या लाभ? दीक्षा लेना निष्फल है उसके लिए। तो दीक्षा क्या चीज है? दीक्षा लेना ये कोई हमारे जीवन की सफलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है और उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। नहीं, वो तो परिपूर्णता के मार्ग में अपनी यात्रा शुरू करता है। बस उसको एक संधि, एक अवसर मिलता है उसको आगे बढ़ने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरि नाम इतना पावन है कि किसी ऐसे विचार के ऊपर आधारित नहीं है, दीक्षा के ऊपर या पुरुषचर्या के ऊपर। पुरुषचर्या मतलब दीक्षा के पहले जो शुद्धिकरण के कार्य होते हैं उनके बारे में। अपेक्षा न करे, दीक्षा पुरश्चर्य विधि अपेक्षा न करे। हरि नाम लेते लेते दीक्षा पुरश्चर्य इनका ज्यादा महत्व नहीं है। जिह्वा स्पर्श आचंडाल स्वर उद्धारे, केवल हमारे मुख अपने मुख से हमें जिह्वा से हमें कृष्ण नाम लेना चाहिए, जिसे एक चांडाल का उद्धार भी हो सकता है। चंडाल जो होता है वो कुत्ते का मांस खाने वाला होता है, मतलब बहुत नीच व्यक्ति, बहुत गिरा हुआ व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अनुसंग फल करे संसारे रक्षाय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय। अनुसंग फले करे संसारे रक्षाय, और क्योंकि वो कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो उसके संसार के बंधन का क्षय हो जाता है, संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। चित्त आकर्षिय करे कृष्ण प्रेमोदय, और फिर उसका चित्त जो है वो कृष्ण के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाता है, और फिर प्रेम का उदय उसके मन में हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण नाम का उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है, कि केवल कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है। और फिर आखिर में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, से तो वैष्णव कौरी होता हर सम्मान। अतएव जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम आता है वो वैष्णव है। हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति वैष्णव है। करिह तहार सम्मान, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें सम्मान करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या परिभाषा दी भक्ति के लिए, अब एक वैष्णव के लिए, कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम आता है वो वैष्णव है, उसको हमें वैष्णव करके मानना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्ण नाम की महिमा ऐसी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन भी किया इसके पहले। तो बड़े प्रसन्न हुए सारे पुलिन ग्राम के निवासी इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर। अगले साल वो फिर से आए, इस बार वो रेशम की रस्सियां वगैरह लेकर आए साथ में, पांडु विजय उत्सव वगैरह बड़े धूमधाम से मनाया चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में। जन्माष्टमी, फिर नंदोत्सव, उसके बाद विजयदशमी, जबकि भगवान रामचंद्र ने रावण को हरा दिया था, मार दिया था, और उस समय सारे भक्त जो हैं वो वानर के भाव में आए, वानर सेना के भाव में, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं हनुमान जी के भाव में आए। तो बहुत सुंदर लीलाएं उन्होंने साथ में किए, और फिर उनको वापस बंगाल जाने का समय आ गया। और जब जा रहे थे फिर से चैतन्य महाप्रभु सबको आलिंगन कर रहे थे, सबकी प्रशंसा करते थे, अपने अपने गांव में वो सबको भेज रहे थे। फिर से कुलीन ग्राम के भक्त उनके सामने आए, और पिछले साल की तरह है उन्होंने वही प्रश्न किया। क्या प्रश्न था? कि वैष्णव क्या है, और उसके पहले क्या किया उन्होंने, क्या प्रश्न पूछा? कुलीन ग्रामी पूर्ववत कैलो निवेदन, प्रभु आज्ञा करो अमर कर्तव्य साधन। कुलीन ग्राम के निवासी जो है पूर्ववत, जैसे पहले साल किया था, एक निवेदन उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। क्या था वो निवेदन? हे प्रभु, आज्ञा कीजिए अमर कर्तव्य साधन, कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी साधना अपनानी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुहि करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। फिर से वही आदेश, प्रश्न वही था कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। अगर तुमने वैष्णव सेवा किया और नाम संकीर्तन किया, दो चीजें, तो बहुत ही शीघ्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर कर पाओगे। तो हमारे लिए ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन से हैं? कृष्ण नाम, कृष्ण नाम का को लेना, और दूसरा वैष्णवों की सेवा करना। और चैतन्य महाप्रभु वचन दे रहे हैं, हमको शब्द दे रहे हैं। क्या है वचन उनका? जो इन दो चीजों को करेंगे शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करेंगे। तो जब महाप्रभु ने उत्तर दिया तो कुलीन ग्राम के निवासियों का प्रश्न आया फिर से। तेह कहे के वैष्णव की तारा लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तारमन। तेह कहे, फिर से कुलीन ग्राम के निवासी महाप्रभु के उस उत्तर को सुन के बोलने लगे, के वैष्णव, वैष्णव कौन है, की तारा लक्षण, कि उनका लक्षण क्या है। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और हंसकर उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों का मन अच्छी तरह से जान लिया और उनका उत्तर देने लगे। क्या है उनका उत्तर? कृष्ण नाम निरंतर जहार वदन, श्री वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। तो उनका उत्तर है, कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, श्री वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे, कि जिस व्यक्ति के मुख से वदने कृष्ण नाम निरंतर निकलता हो वही श्रेष्ठ वैष्णव है, और ऐसे वैष्णव के चरणों को हमें भजना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। मतलब पिछले साल की परिभाषा से थोड़ा अलग है इस बार की परिभाषा। पिछले साल चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? एक बार जो वैष्णव कृष्ण का नाम लेता है उसको सम्मान करना। इस बार क्या बोल रहे हैं? जो निरंतर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करता है क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? उसको श्रेष्ठ वैष्णव मानना चाहिए, उसके चरणों की सेवा करनी चाहिए। अब ये बताया जाता है कि अंतर शब्द, निरंतर शब्द का बहुत कई अर्थ हो सकते हैं। पहले तो हमने बताया कि जो बिना रुकावट के अप्रतिहता जो नाम लिया जाता है उसको भी निरंतर कहते हैं। दूसरा अंतर यह है कि दूसरा मतलब यह है कि अंतर का मतलब है शरीर, और यह शरीर हमेशा हमारे भक्ति में एक अड़चन बन जाता है, क्योंकि यह शरीर अपने हमेशा चाहता है कि उसकी इंद्रियों को तृप्त किया जाए। तो हमारे मन में शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, तो बहुत बड़ा अड़चन हो जाता है। हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता, हम थक जाते हैं, कभी हम बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं, कभी हम प्रवचन सुनना चाहते हैं लेकिन सो जाते हैं, जैसे अभी कई लोग सो रहे हैं। तो ऐसे शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता है, तो ये भी एक अंतर, इसको एक अड़चन है शरीर। तो निरंतर मतलब शरीर को, शरीर के अड़चनों से पार होकर जो भक्ति करता है वो भी निरंतर है। और अंतर का और एक अर्थ है कि जनता, जनसाधारण। तो निरंतर मतलब जो जनसाधारण के संग से, मतलब जो असत संग से परे आ चुका है वो भी निरंतर है। और एक मतलब है अंतर का, वो है लोभ। तो जो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लोभ से परे आ गया है वो भी निरंतर है। तो जब यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सतत कृष्ण का नाम लेता है, जिस व्यक्ति के मन में भौतिक लोभ नहीं है, जो असत्संग नहीं करता, और जिसके लिए भौतिक शरीर ज्यादा अड़चन नहीं बनता है उसके कृष्ण नाम के उच्चारण में, ऐसा वैष्णव जो है वो श्रेष्ठ है और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया तो बड़े प्रसन्न होकर वो चले गए वापस।
अगले साल तीसरे साल फिर से वो आए, फिर से रेशम की डोरियां रस्सियां वगैरह लेकर आए अच्छी तरह से। पांडु विजय उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, अन्य उत्सव बड़े प्रेम से मनाए महाप्रभु के संग में। चार महीने फिर से बीत गए और जब वो हो गया तो चैतन्य महाप्रभु के पास फिर से कुलीन ग्राम के निवासी आए।
वर्षांतरे पुनः तारा आये छे प्रश्न कोईल, वैष्णवेर तारतम्य प्रभु शिखाइल।
वर्षांतरे एक साल के बाद पुनः जब कुलीन ग्राम के भक्त वहां पर आए, वही प्रश्न उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से किया और इस प्रश्न को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको अलग अलग तरह के वैष्णवों के बारे में उपदेश किया और फिर वो कहने लगे महाप्रभु,
जहारा दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान।
जहारा दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, केवल जिनका दर्शन करके हमारे मुंह में कृष्ण का नाम आता है वो क्या है, तहार जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान। उस व्यक्ति को जान लो कि वो प्रधान वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी का वैष्णव है। तो ये तीसरे साल की जो परिभाषा है वो दूसरे साल की परिभाषा से भी थोड़ा अलग है ना। यहां पे तीसरे साल की परिभाषा में क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उस वैष्णव वो वैष्णव निरंतर नाम ले रहा है नहीं ले रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति उनको देखते हैं उनके नाम से भी उनके मुख से भी कृष्ण नाम निकलता है। अब ये कैसे संभव है, अगर वो व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम नहीं ले रहा होगा, अगर उसके अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं होगा तो वो अन्यों के मुख से कैसे कृष्ण नाम को निकाल सकता है। उसको देख के ही दूसरों को प्रेरणा मिलती है कृष्ण कृष्ण कहने के लिए और ये वैष्णव प्रधान सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी का वैष्णव माना जाता है।
क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम।
क्रम से इस प्रकार महाप्रभु ने वैष्णवों के लक्षण सिखाए कुलीन ग्राम के निवासियों को और बताया कि तीन तरह के वैष्णव हैं। एक है वैष्णव मतलब जो साधारण वैष्णव है, दूसरे हैं वैष्णव तम मतलब अच्छे वैष्णव, उनसे भी अच्छे वैष्णव, और तीसरे हैं वैष्णव क्षमा कीजिए दूसरे वैष्णव तर, तर मतलब और भी अच्छे वैष्णव, और वैष्णव तम मतलब सबसे अच्छे वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम, वैष्णव साधारण वैष्णव, अच्छा वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, तीसरे श्रेणी का वैष्णव, दूसरे श्रेणी का वैष्णव, पहले श्रेणी का वैष्णव। तो आइए फिर से याद करते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों श्रेणियों की परिभाषा कैसे दी थी। तो पहले साल में उन्होंने कौन से श्रेणी के वैष्णव का वर्णन किया था, तीसरे श्रेणी केवल वैष्णव मतलब साधारण वैष्णव। क्या परिभाषा थी, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम आता है वैष्णव, लेकिन कैसा वैष्णव, साधारण वैष्णव, तीसरे श्रेणी का वैष्णव। फिर दूसरे श्रेणी का वैष्णव दूसरे साल में चैतन्य महाप्रभु ने परिभाषा की, उसको क्या बोलते हैं, वैष्णव तरह मतलब साधारण वैष्णव से थोड़े ऊंचे स्तर में है वो, और उसके लक्षण क्या है, क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है। निरंतर कृष्ण नाम लेना मतलब क्या, नॉन स्टॉप बिना रुकावट के, और जिसके मन में लोभ नहीं है, बिना लोभ के बिना असत्संग किए हुए शरीर होते हुए भी वो प्रभावित न होकर भगवान का नाम लेता है वैष्णवतर दूसरे श्रेणी का वैष्णव, और पहले श्रेणी का वैष्णव, तीसरे साल में चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया क्या है, जिसको देखते ही अन्य लोग कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं वो है वैष्णव तमा, प्रथम श्रेणी वैष्णव का। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यहां पर वर्णन किया, भेद किया है कि कौन से तरह तरह के वैष्णव हैं। अब काफी लंबा विषय है, अगले रविवार को भी हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, परंतु इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने और एक बार इसी विषय के ऊपर चर्चा की थी, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा अब करेंगे। और ये कब उपदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए थे वृंदावन जाते समय, तो उस समय उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था। प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन लगातार उपदेश दिए थे, और वाराणसी में आने के बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी को ऐसे उपदेश दिए थे। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना की थी चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के आधार पर दिए थे। श्री कृष्ण का वर्णन करने के बाद वो वर्णन कर रहे थे बद्ध जीव का, कि किस तरह जीव यहां पर पतित हो जाता है भौतिक जगत में, और भौतिक कामनाओं की वजह से उसको बारंबार यहां पर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, पुनः पुनः नए शरीर धारण करने पड़ते हैं, हमेशा असत संग की वजह से उसकी दुर्गति होती रहती है। लेकिन विरला ही कोई ऐसे एक भाग्यवान जीव है, कोई अज्ञात सुकृति की वजह से उसको भक्तों का संग किसी न किसी तरह से प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुक्ति के तट पर बह जाता है, चले आता है। ये संसार एक तेजी से बहते हुए नदी के समान है, इसका प्रवाह बहुत तेज है। संसार का प्रवाह हम देखते हैं कि बाहर जाते ही हम माया का प्रभाव कितना पड़ता है ना। जब हम मंदिर में होते हैं तो ठीक है, हम कृष्ण भावना में होते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तरह तरह के आकर्षण होते हैं, हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। तो ये संसार का प्रवाह है, लेकिन भक्तों का संग जब मिल जाता है एक संसारी व्यक्ति को इस नदी में बहते हुए, तो फिर वो किसी न किसी तरह से तट पे आ जाता है। अब उसके उद्धार की तैयारी हो रही है, उसके उद्धार की शुरुआत हो रही है, और फिर वो भक्तों के संग में आता है। फिर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग की महिमा करते हैं, भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं वो, और फिर आगे चल के वो वर्णन करते हैं कि जब आखिर में वो जीव भक्ति में आ जाता है तो धीरे धीरे भक्ति के अलग अलग अंगों को स्वीकार करके प्रगति करने लगता है भक्ति में, और प्रगति करते करते उसकी श्रद्धा में उन्नति होती है। अब हम नाप तोल कैसे सकते हैं, कौन सी चीज है जिससे हम नाप तोल सकते हैं कि ये प्रथम श्रेणी का वैष्णव है, दूसरे श्रेणी का है, तीसरे श्रेणी का है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा के आधार पर वैष्णवों का विभाजन किया जाता है। हालांकि भौतिक दृष्टि से वैष्णव को कभी नहीं देखना चाहिए, परंतु फिर भी श्रद्धा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कौन नौसुखिया है और कौन श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हैं, ये श्लोक आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, विश्वास कहे, वो विश्वास है श्रद्धा, वो सुदृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति कहले कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो सर्व कर्म कृत होए, कि अन्य सारे काम जो हैं वो हो जाएंगे। आगे महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम माध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। देखिए यहां पे उन्होंने अब वर्णन कर दिया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी व्यक्ति कौन होता है, हर चीज के लिए अधिकार चाहिए ना, किसी विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए अधिकार चाहिए, डॉक्टर होने के लिए, इंजीनियर होने के लिए कोई अधिकार चाहिए,
विवाह करने के लिए भी कोई अधिकार चाहिए, ब्रह्मचारी होने के लिए भी कोई अधिकार चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए अधिकार चाहिए, राज्यसभा लोकसभा में बैठने के लिए अधिकार चाहिए। तो हर चीज के लिए इस संसार में अधिकार चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्ति करने के लिए भी अधिकार चाहिए। तो ये अधिकार क्या है? श्रद्धा। यहां पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है? कोई भी प्राप्त कर सकता है, हाँ एक दृष्टि से कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु अधिकार उसको क्या चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए वो। अगर उसके मन में श्रद्धा है तो वो अधिकारी व्यक्ति है भक्ति प्राप्त करने के लिए। और फिर कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार पर, श्रद्धा अनुसारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठा, ये तीन विभाजन होते हैं। तो कनिष्ठ मतलब तीसरे श्रेणी का, मध्यम मतलब दूसरे श्रेणी का बीच वाला, और उत्तम मतलब पहले श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। फिर इन तीनों वैष्णवों की परिभाषा करते हैं कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम है। आप सुनना चाहते हैं? संक्षेप में करके आज की कथा समाप्त करेंगे, फिर अगले रविवार को इस कथा को जारी रखेंगे। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाजार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। शास्त्र युक्ते, शास्त्र के ज्ञान में और शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के न्याय में वो बड़ा निपुण है, सुनिपुण। और क्या? दृढ़ श्रद्धाचार, और उसकी श्रद्धा शास्त्रों में, भगवान में, भक्ति में दृढ़ है। उत्तम अधिकारी से तारय संसार, उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं और वो सारे संसार का उद्धार कर सकता है। तो उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण बताए यहां पर? पहली बात, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए उसको। उस शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए जो तर्क वगैरह करने पड़ते हैं उसमें भी उसको सुनिपुण होना चाहिए। तीसरी बात, उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होनी चाहिए, सुदृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु परिभाषा देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं एक श्लोक का जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसको बाद में रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा। शास्त्र युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धाधिकारीयः स भक्ता उत्तमो मतः। शास्त्र युक्तौ च निपुणः, जो शास्त्रों में और तर्क में बड़ा निपुण है, जो सर्वथा दृढ़ निश्चयः, जिसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है, प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी है, उसकी गंभीर बहुत गहरा होना चाहिए उसकी श्रद्धा, और ये उत्तम भक्त कहलाता है। फिर दूसरे श्रेणी मध्यम अधिकारी का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, जो शास्त्रों, जिसके मन में शास्त्रों का ज्ञान उतना विस्तार नहीं है, विस्तारित नहीं है, इतनी अच्छी तरह से शास्त्रों को नहीं जानता है, और न ही शास्त्रों के ज्ञान को इतने निपुणता से वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, या जो विरुद्ध के सिद्धांत है उनका खंडन इतने अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, परंतु दृढ़ श्रद्धावान, उसके अंदर श्रद्धा है, बहुत दृढ़ श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहते हैं। शेई भाग्यवान, वो भी भाग्यवान है। तो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में अंतर क्या बताया गया है? शास्त्रों के ज्ञान में अंतर है। उत्तम अधिकारी को शास्त्रों का ज्ञान संपूर्ण है और उनको प्रस्तुत भी अच्छी तरह से कर सकता है, तर्क वितर्क में अच्छी तरह से जो विरोधी सिद्धांत है उनको, उनका खंडन कर सकता है, साथ साथ बहुत श्रद्धावान है। मध्यम अधिकारी, उसकी भी श्रद्धा दृढ़ है, परंतु उत्तम अधिकारी जितने दृढ़ नहीं है, है दृढ़ परंतु उत्तम अधिकारी जितने नहीं है। परंतु फर्क क्या है? शास्त्रों का ज्ञान उतना गहरा नहीं है, परंतु श्रद्धावान है। फिर आगे तीसरे श्रेणी कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं।
जहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त हो बे उत्तम।
जहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा कोमल है। कोमल मतलब क्या? बहुत जल्दी हिल सकती है। भक्ति में वो व्यक्ति जल्दी डावाडोल हो सकता है। मंदिर में आने के बाद किसी भक्त ने कुछ उल्टा बोल दिया, भक्ति हमेशा के लिए छोड़ दिया। मंदिर में आना 10 महीने के लिए बंद कर दिया, आएंगे नहीं मंदिर में, क्योंकि एक भक्त ने हमको कुछ कह दिया। उसने कह दिया कि अरे तुम्हारा जूता अच्छा नहीं है, तो हमको बहुत बुरा लगा। या उसने कुछ और कह दिया होगा, तो हम भक्ति करना ही बंद करते हैं, मंदिर आना ही बंद करते हैं। कोमल श्रद्धा। या हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है, पैसे का नुकसान हो जाता है, व्यवसाय में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम सोचते हैं क्या फायदा भक्ति करके, ये सब बेकार है, ये सब झूठ है, तो भक्ति त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा कोमल है, नाजुक है बहुत। थोड़ा कुछ होने पर डामाडोल, डगमगा जाता है, डामाडोल हो जाता है वो। लेकिन क्रमे क्रमे ते हो भक्त हो उत्तम, कि क्रम से जैसे जैसे वो भक्ति करता रहेगा, एक दिन वो भी उत्तम भक्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यह वर्णन करते हैं तीन प्रकार के भक्तों का। फिर आगे कहते हैं,
रति प्रेम तारतम्य भक्त तरतम एकादश स्कंधे तारक रिया छे लक्षण।
रति मतलब आसक्ति और प्रेम, इसके तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कोई व्यक्त, कोई भक्त जो है वो साधारण या श्रेष्ठ माना जाता है। किस हद तक हमारे हृदय में श्रद्धा रति प्रेम भगवान कृष्ण के लिए जागृत हुआ है, उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। और इसके बारे में वर्णन एकादश स्कंद श्रीमद भागवत के 11वें स्कंद में है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। परंतु एकादश स्कंद में इस संदर्भ में क्या लिखा है और आगे चल के भी रूप गोस्वामी क्या कहते हैं इसके बारे में, ये हम अगले रविवार को सुनेंगे। परंतु आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा हुआ, तो कृपया आज ये बताइए कि आज के प्रवचन में हमने क्या क्या सीख लिया। पहली बात शुरुआत से, प्रवचन की शुरुआत से बोलिए, पहली बात हमने क्या सुना कि वैष्णव कौन है। अलग अलग तरह के हो सकते हैं वैष्णव और अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, वैष्णवों के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो पहला जो संवाद था चैतन्य चरितामृत का, वो किन के बीच में हुआ? कुलीन ग्राम के निवासी और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के निवासियों को क्या सेवा दिया था? रेशम की रस्सी बनाने के लिए। किसके लिए? जगन्नाथ जी के लिए। किस समय उपयोग करने के लिए? पांडु विजय उत्सव में। पांडु विजय उत्सव में क्या होता है? भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर ले जाया जाता है और रथ में उनको रखा जाता है। तो वो रस्सी जो पहले इस्तेमाल की जाती थी वो टूटती थी, इसलिए मजबूत रस्सी लाने के लिए कहे। तो कुलीन ग्राम के दो निवासियों का नाम सत्यराज खान और रामानंद वसु। उन्होंने क्या प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु से? हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, तो हमारे लिए साधना कर्तव्य क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया उनको? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करना। फिर उस समय सत्यराज खान ने क्या पूछा? वैष्णव कौन है? और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जो एक बार केवल कृष्ण भगवान का नाम लेता है उसको हमें वैष्णव समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? नाम का महिमा ऐसे है क्योंकि कृष्ण का नाम ही है ऐसे, इसका महिमा हम कर रहे थे ना प्रवचन में, नाम का महिमा, कि कृष्ण के नाम का महिमा ऐसा है कि कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का नाम निरपराध भाव से ले तो बहुत फायदा हो सकता है। क्या क्या फायदा हो सकते हैं? पाप नष्ट हो जाते हैं, संसार क्षय हो सकता है, धीरे 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 से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सम्मान करो, ये वैष्णव है। ये पहले साल की बात। दूसरे साल कुलीन ग्राम के लोग आए, लेकर आए रस्सी, साथ में लेकर आए, और फिर जाते समय उन्होंने क्या पूछा, फिर से कर्तव्य क्या है हमारे, वो पूछने लगे। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, दो चीजें बताई, कृष्ण नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा, ये दो चीजें बताई। और फिर उन्होंने क्या प्रश्न किया, वैष्णव कौन है? इस बार चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है अपने मुख से वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है। इसलिए ऐसे वैष्णव की सेवा करो। फिर अगले साल तीसरे साल जब फिर से कुलीन ग्राम के भक्त आए, फिर से उन्होंने प्रश्न किए, वही प्रश्न किया कि वैष्णव कौन है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस साल क्या कहा उनको, जिनको देखकर ही अन्यों के मुख से कृष्ण का नाम निकलता है ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव प्रधान, और ऐसे वैष्णव के चरण कमलों की सेवा हमें करना चाहिए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तीनों सालों में तीन तरह के वैष्णवों का वर्णन किया। तीन तरह के वैष्णव कौन से हुए, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। तो पहले साल में वैष्णव, दूसरे साल में वैष्णवतर, तीसरे साल में वैष्णवतम। तो इन तीनों का उनका स्तर जो है चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जब सनातन गोस्वामी को उपदेश कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय उन्होंने क्या उनको ज्ञान दिया कि हर चीज के लिए अधिकार चाहिए। तो भक्ति के लिए अधिकार क्या है, श्रद्धा। तो ये श्रद्धा क्या चीज है, विश्वास। कैसा विश्वास, सुदृढ़ विश्वास। क्या कैसा, क्या है, क्या कौन सा विश्वास है ये, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे सारे अन्य काम संपन्न हो जाएंगे, अलग से कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि श्रद्धा के अनुसार भक्तों का, वैष्णवों का विभाजन किया जाता है तीन स्तरों में। कौन से हैं वो तीन स्तर, उत्तम, उत्तम अधिकारी, दूसरा मध्यम अधिकारी, तीसरा कनिष्ठ अधिकारी। सबसे श्रेष्ठ कौन सा, उत्तम, और नीचे वाला कनिष्ठ, बीच में मध्यम। और इनके लक्षण क्या हैं? उत्तम अधिकारी का अधिकार या उसका लक्षण क्या है, शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, दूसरा शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत करने में और विरोधी सिद्धांतों का खंडन करने में भी निपुण, और तीसरी बात दृढ़, सुदृढ़ श्रद्धा है उसको शास्त्रों में, भक्ति में, भगवान में, हा? ये उत्तम अधिकारी। फिर दूसरे स्तर में मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में समानता क्या है, श्रद्धा। दोनों को दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन किसकी श्रद्धा ज्यादा है, उत्तम अधिकारी की। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, शास्त्रों का ज्ञान मध्यम अधिकारी को उतना नहीं है, है परंतु उतना नहीं है, इसलिए वो निपुणता से शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत नहीं कर सकता है और विरोधी सिद्धांतों को उतने निपुणता से खंडन नहीं कर सकता। तो वो है मध्यम अधिकारी, और तीसरा कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या है? उसकी श्रद्धा कोमल है, बहुत जल्दी भक्ति छोड़ के जा सकता है। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया अपने जीवन में कहीं भी, शायद कृष्ण भगवान को त्याग भी दे। हालांकि कोई त्याग नहीं सकता, एक बार कृष्ण के शरण में आए व्यक्ति कोई हमेशा के लिए त्याग नहीं सकता कृष्ण को, परंतु थोड़े समय के लिए कम से कम वो चले जाता है। फिर जब संसार में धक्का बहुत खा लेता है फिर उसको वापस आना ही पड़ता है, आखिर जाएगा कहां बेचारा। एक बार जिसने कृष्ण भक्ति के रस का स्वाद लिया है वो कहां भाग के चला जाएगा कृष्ण को छोड़कर, बार बार उसको आना ही पड़ेगा कृष्ण के शरण में। तो ये है कनिष्ठ अधिकारी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया ये है तीन तरह के भक्त, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम, या कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत के इन तीनों तरह के अधिकारियों का वर्णन आता है, तो उनका वर्णन हम अगली बार पढ़ेंगे सुनेंगे। साथ साथ श्रील रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं इन तीन तरह के भक्तों का, उनका भी वर्णन हम अगली बार सुनेंगे। इस स्थान तक हम पहुंच नहीं पाए आज, तो अगले रविवार को सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न है, टीका है, आप पूछ सकते हैं।
मायावादी ये कौन सी श्रेणी में आते हैं?
मायावादी कौन से श्रेणी में आते हैं आप बोलिए, कोई उत्तर देंगे? प्रश्न ये है कि भक्तों की श्रेणियों का वर्णन आया, तो मायावादी लोग कौन से श्रेणी में आते हैं? तीन श्रेणियों में से कौन से श्रेणी में आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल सही। क्यों नहीं आते? वो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं माने जाते हैं वो। हाँ, परंतु निरपराध भाव से नहीं लेते हैं, नाम लेते हैं लेकिन निरपराध भाव से नहीं लेते, इसलिए उनको भक्त नहीं माना जाता है। इसलिए ये केवल भक्तों का वर्णन हो रहा है, वैष्णव का वर्णन। वैष्णव और मायावादी में अंतर होता है, कम वैष्णव को भगवान और भगवान के नाम के अभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए, ये एक मूल बात है। मायावादी लोग भगवान और भगवान के नाम में भेद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, क्योंकि वैसे मूल रूप से भगवान निराकार हैं और वह रूप धारण करते हैं, ये नाम भी है भगवान से भिन्न है। तो जो लोग भगवान और भगवान के नाम में अंतर करते हैं वो भक्त नहीं कहला सकते। और कोई प्रश्न?
बाहर जाते धोती कुर्ता पहन के एक तिलक लगा के तो लोग बोलते हैं हरे राम वाला चला है, तो उनको मुंह में हरे कृष्ण का नाम आता है, तो हम उच्च वैष्णव हो
हरे कृष्णा। हमको ऐसे सोचना नहीं चाहिए। जब दूसरे के मुख से कृष्ण नाम निकालने का मतलब है दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि हमको भी कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, हमको भी सतत कृष्ण का नाम लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, हम वैष्णव पोशाक में जाते हैं। क्यों? ताकि जब दूसरे लोग हमको देखें तुरंत कृष्ण का स्मरण करें। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम उत्तम अधिकारी हो गए, परंतु कम से कम हमारे पोशाक से लोगों को कृष्ण का स्मरण आएगा, कितना लाभ है। साथ साथ हमारे लिए भी लाभ है। हमारे लिए क्या लाभ है? हाँ, खुद हमको याद रहेगा कि हम वैष्णव पोशाक पहने हैं, तो हमारे लाभ क्या है वैष्णव पोशाक पहनने से, तिलक कंठी माला धोती कुर्ता इत्यादि पहनने से? हाँ, वो तो फायदा हो गया कि हमारी वजह से दूसरे कृष्ण का नाम लेंगे, वो दूसरों का फायदा हो गया। हमारा फायदा? श्रद्धा बनाए रहेगा। अच्छा, ये बताइए, धोती कुर्ता तिलक पहन के आप इधर सामने जा सकते हैं, उधर सामने जा सकते हैं, टॉकीज में, सिनेमा थिएटर में जा सकते हैं?
क्यों नहीं जा सकते? आप सोचेंगे अरे मैंने तिलक तिलक सब पहना हुआ है, कैसे जाऊंगा मैं अंदर? दूसरे लोग बोलेंगे अरे तुम क्या हो, हरे कृष्ण वाले सिनेमा अंदर बैठे हो, है कि नहीं? तो किसकी भलाई होती है इसमें? हमारी भलाई, हम डर के मारे नहीं जाते हैं ना, तो हमारा संरक्षण होता है कि नहीं? तो हम गलत काम से खुद बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमको देख रहे हैं, हमने वर्दी पहनी है वैष्णव की, तिलक है, कंठी माला है, धोती कुर्ता, आप गलत काम नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए, हम झगड़ा नहीं कर सकते बाहर जाके। तो इस तरह से ये वैष्णव पोशाक पहनने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, उनको कृष्ण का स्मरण होता है, परंतु हमें गलत काम करने से ये रोक देता है। इसलिए इसमें हमारी भलाई भी है। इसलिए ये चाहिए कि भक्त ज्यादा से ज्यादा वैष्णव पोशाक में ही चलें। अगर हम तिलक वगैरह नहीं लगाएं, ये आसान तरीका है कि हम तिलक मिटा दें, कंठी वाला निकाल दें, पैंट शर्ट पहन के चले जाएं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को वैष्णव पोशाक में ही रहना चाहिए। और जो प्रभु जी हैं ज्यादा से ज्यादा उनको भी धोती कुर्ता में रहने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, कभी कभी नौकरी में जाते समय वगैरह शायद जो मालिक हैं उनको उतना पसंद नहीं आए, शायद नहीं पहन पाए, लेकिन जिनका व्यवसाय है, जिनका जो अपने पैरों पर खड़े हैं, वो धोती कुर्ता पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं उसमें, तिलक पहन सकते हैं। और जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको कोई अभी व्यवसाय नहीं करना है, उनको पैंट शर्ट पहनने का सवाल ही नहीं, पहनना ही नहीं चाहिए, त्यागना चाहिए बिल्कुल, केवल धोती कुर्ता वैष्णव पोशाक बस। और जो माताएं हैं उनको केवल वैष्णव पोशाक पहनना चाहिए और कुछ नहीं, विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और कोई प्रश्न?
डायरेक्टली गो बैक होम टू गॉडहेड और यू हैज टू अटेन उत्तमाधिकारी स्टेज एंड देन यू हैज टू गो।
प्रश्न ये है कि मध्यम अधिकारी व्यक्ति क्या भगवान के धाम को वापस जा सकता है, कि उसको उत्तम अधिकारी के स्तर में जाकर ही फिर जाना होगा? साधारणतः जब तक कि वो उत्तम स्तर में नहीं पहुंचता तब तक वो भगवान के धाम में पूरी तरह से नहीं जा पाएगा। परंतु याद रखिए कि ये तीन स्तर जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्तर में प्राप्त करने के बाद हम वहीं के वहीं हमेशा के लिए रह जाएंगे। नहीं, हम भक्ति करते करते क्रम से, जैसे महाप्रभु वर्णन कर रहे थे, हम प्रगति करते जाएंगे ना। तो जो कनिष्ठ है वो थोड़े समय के बाद मध्यम हो जाएगा भक्ति अच्छी तरह से करने से, जो मध्यम है वो उत्तम हो जाएगा, जो उत्तम है वो और भी उत्तम हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति भक्ति में सदैव प्रगति करता रहेगा, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए हमको शुद्ध पूरी तरह से होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हमको उत्तम अधिकारी बनना ही चाहिए, वो हमारा अधिकार है भगवान के धाम में जाने के लिए। जैसे अमेरिका जाने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, वो अधिकार चाहिए, ठीक उसी तरह से भगवान के धाम में जाने के लिए हमको कम से कम शुद्ध भक्त होना चाहिए। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ दो शब्द का बताया गया है, एक कनिष्ठ और यहाँ साधारण, और मध्यम तरण और मध्यम अधिकारी और वैष्णवतम या उच्च वैष्णव, ऐसा बताया गया। मतलब दोनों शब्द एक ही है या
एक ही? एक समान मानना चाहिए उनको।
अगर किसी ने श्रद्धा दृढ़ बनाई लेकिन शास्त्रों में निपुण नहीं हो पाया तो
मध्यम अधिकारी। परंतु अगर शास्त्रों का उतना ज्ञान न होते हुए, थोड़ा बहुत तो आवश्यक है, लेकिन उतना शास्त्रों का ज्ञान न होते हुए अगर भक्ति करते करते उसकी श्रद्धा इतनी सुदृढ़ हो जाती है उत्तम अधिकारी के समान, तो फिर वो उत्तम अधिकारी हो जाता है। और उत्तम अधिकारी के स्तर में फिर उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई ऐसे महान वैष्णव हुए हैं जो भौतिक दृष्टि से अनपढ़ भी थे, कभी उन्होंने पुस्तक नहीं खोला था, लेकिन उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान खुद ब खुद प्रेरणा दे देते हैं अंदर से। शास्त्रों का ज्ञान पूरा होना इसका यह मतलब नहीं है कि हमको जितने भी सारे वेद शास्त्र हैं सब हमको कंठस्थ होने चाहिए, ऐसा नहीं। कितने सारे वैदिक शास्त्र हैं, चार वेद हैं, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, पुराण, कितने सारे संहिता, बहुत सारे ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, हजारों की संख्या में शास्त्र हैं, पढ़ने को समय नहीं और जरूरत भी नहीं है। लेकिन इन सारे भक्तों का सार जो है, इनके मूल सिद्धांत जो है, इनकी सूक्ष्म बातें जो हैं, उनका ज्ञान हमको होना चाहिए अवश्य। भले हमको यह नहीं मालूम हो कि अश्वमेध यज्ञ कैसे करना चाहिए, लेकिन हमको भक्ति कैसे करना चाहिए अगर ये मालूम है तो ठीक है उतना। तो शास्त्रों में निपुण होने की बात का मतलब है भक्ति के शास्त्रों में निपुण होने की बात, केवल कर्मकांड के शास्त्रों में निपुण होने की बात नहीं है इसमें। तो भक्ति का जो सार है, भक्ति के जो सिद्धांत है, उसका मूल और उसका सार अगर हम समझ गए तो उतना ठीक है हमारे लिए। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए ठीक है अब आसान है तो हम कोई प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे नहीं, अभी शास्त्रों में निपुण होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। हरेक भक्त को श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन रोज करने का प्रयास करना चाहिए, गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो लिखता है, ध्यान से पढ़ता है, उसी तरह से हमें भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, भले हमें सारी बातें समझ में आए या नहीं आए। ठीक है। और प्रवचन में भी समय पे आके सारा प्रवचन सुनना चाहिए, जो भी प्रवचन दे रहा हो, ब्रह्म वाक्य हमें अच्छी तरह से सुन लेने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुन लेने चाहिए, और जब नींद आती है तो अपने आप को संभाल लेना चाहिए, आसानी से सो नहीं जाना चाहिए। नींद तो आने वाली आएगी, लेकिन हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है। इसलिए हमको भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए प्रवचन, ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की किताबें, फिर हम भी शास्त्रों के सार में निपुण हो सकते हैं। और कोई प्रश्न?
विश्वास में क्या फर्क है?
वो एक श्लोक हमने कहा था, श्रद्धा